कुछ इशारात थे ना फतेह मक्का में, उसमें दूसरा इशारा। मक्का को नबी सल्लम जब मुहिम लेकर चले तो शुरू से ही ऐसी तदबीर इख्तियार की कि खून रेजी ना होने पाए। इसको हाईलाइट करें। मैंने इस जुमले को पढ़ा तो मुझे क्या लगा, खर्चा कम से कम हो। देखिए कि बहुत सारी जानों का खून बहा कर अगर मक्का फतह होता ना तो खुशी तो तब भी होती, लेकिन साथ उस खुशी में गम की झलक आ जाती कि हाय हमारे प्यारे फलां फतह के मौके पे मारे गए। जैसे आज भी लोग पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन की बात करते हैं, पाकिस्तान बनने की खुशी मनाते हैं, तो एक आह उठती है उनके दिल से। हमारे अपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब निकले तो ये हुआ, फिर रस्ते में फलां मारा गया, फिर फलां की नाक कट गई, फिर उसका हाथ कट गया, और वो कुर्बानियों का सिलसिला होता है। जैसे पिछले शायद 1 साल पहले मैं पाकिस्तान में थी तो 14 अगस्त आई ना, तो जो हल्ला गुल्ला और सब कुछ था, तो उस दिन मेरा एक दर्स था लाहौर में, तो मेरी वहाँ एक रिश्ते में खाला है यानी अम्मी की कज़न, तो वो आई थी। इन लोगों ने अपनी आंखों से सब हिजरतें देखी और की भी है ना, तो उस वक़्त उन्होंने ये बात शेयर की थी जो मैं आपको बता रही हूँ। कहने लगी, लोग 14 अगस्त को हर तरफ जश्न मनाते हैं और हमें अपने याद आते हैं। जब ये लोग निकले थे वहाँ से बरेसगीर पाक व हिंद से, तो कितनी बहनें कितने भाई और बच्चे थे, और रास्ते में एक एक करके मरते गए। और एक ऐसा भी मुकाम आया कि बाप ने एक लाइन में खड़ा करके अपनी सारी बेटियों को कत्ल किया। क्यों? कि दुश्मन उनकी इज्जतें लूट रहे थे। कोई दरियाओं में कूद गई औरतें अपनी इज्जतें बचाने के लिए। और हमारे अपने ही घर की एक बहुत करीब मेरी, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो जो अपने बच्चों के मरने का वाक्या सुनाती हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ थे और किस तरीके से बीच में पानी आ गया, छोटा सा कोई नदी नाला था, और ये भी उसमें और बच्चे हैं, और यानी इतनी ज़्यादा नकाहत है कि बच्चे रो रहे हैं और ये माँ उसको उठा नहीं पा रही। और कहती हैं कि मैंने अपने कानों से अपने बच्चे की रो रो के आखिरी हिचकियाँ मौत तक की सुनी है, लेकिन मैं उसको बचा नहीं सकती थी। तो ये याद रखिए, जब बहुत बड़ी खैर मिले, खुशी मिले, सेलिब्रेशंस हों, ये अपनी जगह, लेकिन कोशिश कीजिए कि खून रेजी ना हो, माल रेजी ना हो, वक्त रेजी ना हो। मकसद को नज़र में रखिए। जिसने आना है ना, उसने हमारी झंडियाँ और फूल बताशों को देख के नहीं आना, वो तो आएगा मैं मारफू मिन अलहक। मेहनत करें तो इस पे करें कि पैगाम क्या देना है, डिसिप्लिन कितना हो, लोगों को उससे खैर कितनी मिले। मकसद दिखाइए। ठीक है, खुशी अच्छी होती है, हस्बे इस्तेआत जो हो सके अल्लाह से मांग लीजिए, लेकिन हम आज भी आप देखिए बात सब एहतमाम बहुत करते हैं चीज़ों का, असल रूह ख़त्म होती है। 1 घंटे का दर्स दिल सोजी वाला, और उसके बाद 10 खाने, लंबे लंबे दस्तरखान, और 2-2 घंटे के खाने पीने, जाने तक वो दर्स का असर ज़ायल हो चुका होता है। तो बहरहाल ऐसी तदाबीर इख्तियार करें कि खून रेजी ना हो। तो बहरहाल ये एक साइड पॉइंट था। दूसरा नुक्ता देखिए, अपने इरादे को राज में रख कर सफ़र किया, ये भी बात है। लीडर के लिए ये हक मौजूद है कि ज़रूरी नहीं कि अपने साथियों को हर बात शुरू में ही बता दें। ये अल्लाह ने फतह मक्का से सिखा दिया, और आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इसी सीरत में तबूक का सफ़र, बच्चे बच्चे को बता दिया कि हम तबूक जा रहे हैं, कर लो जो करना है। जिसने चलना है शौक़ से चले, जिसने नहीं जाना शौक़ से ना जाए, और जिसने रोकना है शौक़ से रोक ले, और जिसने रास्ता देना है शौक़ से दे दे। तो लीडर को पता होता है हालात और वक्त का तकाजा, वक्त की नफ्स पे हाथ रखा। फतेह मक्का के मौके पे नहीं बताया, और यहाँ ये भी पता चलता है कि क्या समा उतात थी। हम जैसे होते बताइए तो सही प्लीज़, फिर हम तैयारी तो कर लें, फिर हम माइंड सेट कर लें, फिर हमें पता होगा वहाँ क्या होगा, किधर जाना है, बस कह दिए जो होगा देखी जाएगी। और कुरैश को किसी तैयारी और आसपास से कोई मदद हासिल करने का मौका दिए बगैर मक्का के दरवाजे पर यकायक पहुँच गए। इस तरह मुखालिफ ताकत जो पहले हद दर्जा कमज़ोर हो चुकी थी बिल्कुल मबहूत हो गई। कहाँ है कुरान में ये लफ्ज़? तीसरे पारे के शुरू में हज़रत इब्राहिम का किस्सा नमरूद के साथ, फबुहित अल्लज़ी कफर, तो मबहूत हैरान सरप्राइज्ड जिसको आप कहते हैं, सटपटाना। फिर अबू सुफियान जिसकी ज़हनी शिकस्त का आगाज़ बहुत कबल हो चुका था, उन्हें मुनासिब तदाबीर से बिल्कुल मरूब कर दिया। अबू सुफियान के झुक जाने की वजह से कोई मौका न रहा कि अहले मक्का मुज़ाहमत करें, यानी रिजिस्ट करें। यही मकसद था जिसके तहत आपने एक फ़ौजी अफसर को महज एक सख्त नारा लगाने की बिना पर दस्ते की कमान से अलग कर दिया। नोट करें, अल्लाह के नबी ये बर्दाश्त नहीं करते थे। एक फ़ौजी अफसर ने एक नारा ज़रा सख्त सा लगा दिया, आपने कहा पीछे हो जाइए। बस लोग जज्बाती होते, इमोशनल होते, कहते मुंह से बात निकल गई, खुशी में कह दी, पेट में ना रही। याद रखिए, बस दफ़ा तहरीकों को किसी एक बंदे के एक चुलबुले से जुमले और एक ऐसी चीज़ के जिसके बगैर गुजारा होना था, उसके करने की वजह से नुकसान होता है। अपने जज्बात पे अगर आपको काबू नहीं है तो आप दुश्मन पे काबू नहीं पाएंगे। अगर आपने ख़ुद को मुसख़र नहीं किया ना, तो आप दुश्मन को मुसख़र नहीं करेंगे। तो फिर करेक्टर बिल्डिंग, दुआ करते हैं मैं भी और आप भी। अल्लाह मेरे अंदर के झोल मुझे दिखा, अल्लाह मेरी वो आदत दिखा जो मेरे आगे बढ़ने में रुक रही है, अल्लाह मेरी वो आदत दिखा जो मुझे नेकियों से दूर कर रही है और उसको फिर दूर भी कर दे। करेक्टर बिल्डिंग करते जाएं, अपने लूप होल दूर करते जाएं, आपका ये सफ़र ना सिर्फ ये कि खूबसूरत बल्कि बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और अहले मक्का को इत्मीनान दिलाया कि आज का दिन काबे की हुरमत का दिन है। आज अहले मगरिब को ये बात बताने की है कि हमारे नबी जंग के हरीस नहीं थे, खून बहाना नहीं चाहते थे, आपकी नज़र मकसद पे थी। बग़ैर खून बहाए हासिल हो गया बिस्मिल्लाह, और अगर फिर बहाना पड़ा खून तो फिर हम इसके लिए भी तैयार हैं। तो ये दूसरे पॉइंट से क्या सीखा फिर? तदाबीर, स्ट्रेटजीज, हिकमत अमली, कम मेहनत फ़वाद ज़्यादा, राज रखना, इख्फा रखिए अपने इरादों को, फिर यकायक पहुंच जाना, दुश्मन को तैयारी का मौका ही ना देना, फिर ज़हनी शिकस्त पहले जिस्मानी शिकस्त से, और इमोशनलिज्म को पसंद ना करना, गवारा ना करना। इमोशंस अच्छे होते हैं पर वक्त पे, बेमौके के जज्बात जो होते हैं ना, बाज़ुबा पूरी महफिल का रंग ही बदल देते हैं। चलिए तीसरा नुक्ता देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक के कट्टर दुश्मनों और ख़ुद अपनी ज़ात पर और अपने महबूब साथियों पर कई साल तक मजालम ढाने वालों, तमस्खुर करने वालों, गलाजत फेंकने वालों, रास्ते में कांटे डालने वालों, कैद करने वालों, कत्ल की साजिश करने वालों, वतन से निकालने वालों, फिर तलवार लेके मैदान जंग में उतरने वालों के गंदे और संगीन जराइम बिल्कुल भुला दिए और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। इसको हाईलाइट करें, तीसरे नुक्ते का पॉइंट लिख लें ऊपर हाईलाइट करके, एक छोटा सा सब टॉपिक माफ़ी आम। क्या ना किया लोगों ने, जुल्म, तमस्खुर, गंदगी फैली, कांटे डाले, कैद किया, कत्ल की साज से, वतन से निकाला, फिर तलवारें लेकर निकल आए। कितने बड़े बड़े जुर्म थे मक्का वालों के, और इसके मुकाबले में सिर्फ 5 लफ्ज़, मीम ऐन अलिफ फा या, माफ़ी। सख्ती की बजाय नरम पॉलिसी का मुद्दा जाहिर किया, इसको भी नोट करें। सख्ती अपनी जगह अच्छी होती है, बस दफ़ा लीडर को नरम होना पड़ता है, और अंदर से नरम ऊपर से सख्त, देखने में फॉर्म लगे कि इनको नहीं हम हिला सकते, लेकिन जितने करीब आते जाएं तो अंदर से एक नरम इंसान नजर आए। रूल्स बनाइए लेकिन ज़ुबान नरम रखिए, ये सीख रहे हैं हम इसमें से। नबी सल्लम एक दुनियावी फातह ना थे कि जबर व कुव्वत से कुछ लोगों को महकूम बना लेते और डंडे के ज़ोर से डरा धमका कर इनको अपने अहकाम का पाबंद बना लेना काफ़ी होता। आप एक दावत, एक मिशन, एक अखलाकी तहरीक और एक पाकीज़ा निज़ाम के अलमबरदार थे। आपके मकसद के लिए ऐसे मफ्तूहीन बेकार थे जिन्हें मारे बांधे इताअत में लिया गया हो, इसको हाईलाइट करें, ये तो मैं अभी आपको कह दूंगी। आप ज़बरदस्ती किसी से ये काम नहीं ले सकते। मेरा आपका काम क्या है? कि लोगों के दिल मजबूर करें उनको इस काम को करने के लिए। किसी को मैं कोई काम दूं, ठीक है जी, मुरव्वत में, रिस्पेक्ट की वजह से, झिझक की वजह से, लेकिन असल बात क्या है कि वो अपने दिल की मजबूरी की वजह से ये काम करें, फिर असल बात होगी। आपको दिलों की तब्दीली दरकार थी, इसको भी हाईलाइट करें। दिलों की तब्दीली हमेशा नरमी और एहसान और अफ की सूरत में हो सकती है, इसको हाईलाइट करें। आप चाहती हैं आपके बच्चों के दिल बदलें, आपके साथियों के दिल बदलें, आपके बहन भाइयों के दिल बदलें, आपकी फ्रेंड्स के दिल बदलें, तो नरमी अंदर, सॉफ्ट कॉर्नर, लव, केयर, एहसान और अफ, ये तीन गुण बना लें। देखिए वही बात है ना कि नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रज्म हो के बज्म हो, पाक दिलो पाक जू। अलामा इकबाल ने एक अच्छे लीडर की यही खूबियाँ रखी हैं। एक और शेर में कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, कि यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। लीडर कौन होता है? निगाह बुलंद, बड़े ऊंचे उसके अजायम होते हैं, ऊंची चीज़ें देखता है, नीचे तो उसने देखना ही नहीं सीखना। अल्लाह पे नज़रें लगती हैं, हाई गोल्स, गोल सेटर। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, बात करता है तो दिल में उतर जाती है, और जहाँ पुरसोस, जान तड़प रही है, लाल लकबाख नफ्स का, यही है रखते सफ़र। रखते सफ़र कहते हैं मुसाफिर के साथ जो तोशा जाता है, रास्ते का सामान मीरे कारवां के लिए। यानी अगर आप एक कारवां के कायद और रहनुमा बनना चाहते हैं ना, तो ये तीन गुर अपने अंदर डाल लें। कभी लोगों को छोटा गोल ना दें, कभी लोगों को ढीला ना होने दें, रिलैक्स ना होने दें, बात करें तो मिठास के साथ करें। और आपकी जान तड़पती और आपका खुद उठना बैठना और आपका खुद मेहनत करना उनको दिखा दे कि बात बड़ी अहम है जो हो रही है। फिर देखिए किस तरीके से बात होती है, फिर दिल बदलते हैं। आपका मुद्दा जब भी पूरा हो सकता था कि अहले मक्का शर्मसार और नादिम होकर नया दौर शुरू करें। एक नज़रिया हक और तामीरी नस्बुलइन रखने वाली हस्ती के लिए कोई दूसरी फातेहाना पॉलिसी काबिले अमल ना थी। जी ये भी नोट करें, अगर आपने फरीके मुहालिफ के अंदर नदामत का एहसास डाल दिया, ये नहीं कि उसको शर्मिंदा करें, उसकी इज्जत ख़राब करें, ये नहीं मुराद, उसको एक गिल्ट होने लगे कि मैं किस बंदे के साथ उलझा, मैंने किस दावत को या मैंने किस तहरीक का रास्ता छोड़ा या मैंने किस से लोगों को रोका, कितनी रुकावटें खड़ी की। बस याद रखिए वही बात है कि इदफा बिल्लती ही आसन, बुराई का जवाब भलाई से दो, किल विद काइंडनेस, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। आज हमने दोस्तों को भी दुश्मन बनाया हुआ है, अल्लाह हमारा हाल बेहतर कर दे। तो फिर इस पॉइंट में क्या समझ आई? कि दिलों को बदलें और अपने अंदर वो नरमी लेकर आए जो दूसरों को भी नरम कर दें, वो हरारत लेकर आए जो दूसरों को पिघला दें, और आपका खुद एक्टिव होना, जज्बात से भरे होना, किसी मकसद के लिए भाग दौड़ करना आपके साथ वालों को भी इंशाल्लाह हिला जुला देगा। मोहसिन इंसानियत की निगाह इस हकीकत नफ्सुल अमरी पर भी थी कि कुरैश बहरहाल अरबों में क़ियादत करने के लिए मौजूद तरीन तजुर्बेकार अंसर हैं। ये कबाइल अरब के औराक परेशान की शिराजा बंदी के लिए एक ऐसा मजबूत बंधन है कि अगर इनको ज़ाया कर दिया जाए तो आसानी से कोई दूसरा बदल फराहम नहीं किया जा सकता। असूलन ये इस्लामी नज़रिया बरहक और वाजिबुल कबूल की इमामतों क़्यादत का मुस्तहिक वो जो ईमानो तकवा में पेश पेश हो, मगर ईमानो तकवा के साथ क़्यादत की ज़हनियों अमली सलाहियतों का होना तो एक खुली हुई अक्ली ज़रूरत है। इस काम के लिए असर व रसूख चाहिए, हुक्मरानी और कमांड का तजुर्बा चाहिए, तदबीर व मसलहत का शऊर चाहिए, ज़ुबान और दूसरी कुव्वतों से काम लेने की महारत चाहिए। نفسیات عامہ کا عرفان چاہیے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قیادت کرنے والے افراد یا عناصر کامیاب جب ہی ہو سکتے ہیں کہ ان کی برتری عوام میں پہلے سے مسلم ہو اور رائے عام کی سرزمین میں ان کی جڑیں گہری ہوں. کسی قیادت کا درخت ہوا میں نصب نہیں ہو سکتا. اس کو ہائی لائٹ کریں، ایک ایک جملہ اس کتاب کا جو ہے وہ غور کے قابل ہے. سب سے بڑی چیز جس نے مجھے اس کتاب کو چوز کرنے میں مدد دی تھی وہ اس کی لفاظی ہے. چھوٹے جملے واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر اس سے مورلز لینا. تو قائد کب بنتا ہے؟ ہواؤں میں نہیں بنتا. یاد رکھے قیادت بہت اندر کی جڑیں مضبوط ہونا پھر حاصل ہوتی ہے اور ہو جائے. کیونکہ قائد تو ایک درخت ہے نا، آندھیاں بڑی چلنی ہیں، طوفان بڑے ہیں، مخالفتیں بڑی ہیں، اور اگر ہوا میں قیادت کا درخت ہوگا نا تو پہلے ہی فتنے پہ گر جائے گا. اللہ میں گرنے والوں میں نہ کرے بلکہ تھامنے والوں میں کرے. قریش کی قیادت کی صلاحیتیں جاہلیت کے تابع تھیں تو اسلام کی نگاہ میں مسترد تھیں، لیکن اب اگر وہ اسلام کے تحت آ کر ایمان و تقویٰ کا جوہر حاصل کر سکتی تھی تو اب وہ ایک متاع گراں بہا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ سلوک کی ساری پالیسی اسی مدعا کے تحت وضع کی کہ اسلامی نظام اور تحریک اسلامی کو لیڈر اور کارفرما افراد قریش سے مل سکیں. جبر سے کچلے ہوئے اور ذلیل شدہ قریش اس ضرورت کو پورا نہ کر سکتے تھے. تو پھر کیا پتہ چلا اس تیسرے پوائنٹ کے اندر سے؟ تو یہی نقطہ بہت اہم اور قابل غور ہے کہ آپ کو مجھے اپنے کردار کو پختہ کرنا ہے. جب آپ کے میرے اپنے اندر پختگی ہوگی تو ہم دوسروں کو بھی جما لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ آپ سے کام لے گا. جتنا زیادہ اپنے کردار کو بلند کرتے جائیں گے، مخالفتوں کی آندیاں چل چل کے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے. پھر اگلا نقطہ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 4، کسی بھی دنیاوی سیاست کے علم بردار سے آپ اس شان خدا پرستی کی توقع نہیں کر سکتے جس کا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے تو کوئی طبل دمامہ نہیں یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ، کوئی فخر و مباحات نہیں یعنی پوئٹری کے ذریعے اور فخریہ باتیں کرنا، کوئی دعویٰ نہیں بلکہ الٹا وادخل الباب سجدا کی تعمیل میں سر تسلیم بارگاہی میں خم ہو جاتا ہے. اللہ کی حمد کے ترانے زبان سے جاری ہوتے ہیں، نعرہ بھی زبان پر آتا ہے تو اللہ کی بڑائی کا آتا ہے وربک فکبر. اذانیں اور نمازیں اور دعائیں مکہ کی فضا کو نور سے بھر دیتی ہیں. اپنا کوئی مفاد حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے اور مہاجرین کے املاک جو قریش نے ظالمانہ طور پر ہتھیا لیے تھے وہ بھی انہی کی تحویل میں رہنے دیے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غیر نسبت شعار ناقدین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک کے خدا پرستانہ رنگ کو محض مصلحت کا مظہر قرار دیا ہے، بلکہ بعض نے تو کھلم کھلا اسے نعوذ باللہ ایک ڈھونگ ثابت کرنا چاہا. انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ڈھونگ رچانے والوں کو جب بھرپور کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر سارا پول کھل جاتا ہے اور مصلحت کا کچا رنگ اڑ جاتا ہے. خدا نخواستہ یہ کوئی سیاسی سوانگ ہوتا تو فتح مکہ نے وہ موقع پیدا کر دیا تھا کہ جب کہ اصل حقیقت کھل جاتی اور اللہ کی بڑائی پکارنے والے اس دن اپنی بڑائی کا اعلان کرتے دکھائی دیتے. اس کو ہائی لائٹ کریں، وربک فکبر کی بجائے انا اکبر، اور میں اپنی اپڑائیاں کروں. مگر وہاں حال یہ تھا کہ حضور اپنے خطبہ فتح میں کامیابی کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی. جی یاد ہیں وہ دعائیں جو اللہ کے نبی کی معروف ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر سے نکلتے تھے، عموماً سفر سے واپسی پہ بھی یہی دعائیں مانگا کرتے تھے، ہضم العبدا و نصر عبدا، کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. تو اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ یہ ڈھونگ نہیں ہوتا، अगर आप सच्चे हैं ना, तो खुशी, फतह, शिकस्त किसी मौके पे बड़ाई नहीं करेंगे, अपनी ज़ात के गुण नहीं गाएंगे। तबल नहीं है जश्न के नाम पर अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। एक ही नारा ज़ुबान पे, अल्लाह अकबर, अजानें, नमाजें, दुआएं, ये आप इर्द गिर्द होंगी। अल्लाह हमें ऐसे ही बना दे। आज हम ऊपर के वनीर चढ़े हुए मुस्लिम, हमें ये नहीं पता कि हम खुश किस बात पे हो रहे हैं और कैसे होना है। हमें तो खुश होना भी नहीं आता और उसी खुशी में अल्लाह को नाराज़ भी कर देते हैं समटाइम। फिर पांचवा और आखिरी नुक्ता देखिएगा, नबी सल्लम ने फतह मक्का के मौके पर ना सिर्फ सियासी जराइम माफ़ कर दिए, बल्कि बाज़ अफराद के ऐसे कानूनी जराइम जिन पर कसास लिया जाना था, इनकी भी माफ़ी दे दी। इन नज़ायर यानी मिसालों को पेश नज़र रख कर, कानूनी नुक्ते नज़र से दौरे हाजिर के हालात में ये सोचा जाना चाहिए कि इस्लामी निज़ाम में सदर हुकूमत सज़ाओं में माफ़ी या तख़फीफ़ का इख्तियार कहाँ तक पा सकता है। यानी माफ़ी आम तौर पे तो जो था सो था। बस देखिए ना, कानूनी चीज़ें होती हैं, चोर है तो उसका हाथ काटना है, या अगर कत्ल किया है तो कत्ल, तो ये तो पर्सनल चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी ने अमूमी तौर पे भी और ख़सूसी तौर पे भी लोगों को माफ़ किया। तो हमारी भी ज़िंदगी में बहुत सारी फतह मक्का आएंगी। हर टारगेट का अचीव कर लेना एक फतह मक्का है। हमारा सबका मामला भी अल्लाह के साथ है। अगर अल्लाह के नबी की सीरत पढ़कर हमारे अंदर कोई तब्दीली ना आई, तो याद रखिए फिर कभी नहीं आएगी, इल्ला माशाल्लाह, फिर अल्लाह ही को सबब बना दे। तो अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा दिल दिमाग नबी के तरीक़ों पे जोड़ दे। और आप देखिए कि आम लोगों को भी और ख़ास लोगों को भी सीरत पढ़कर हमेशा अपने लिए अमल की बातें मिलती हैं। अगर आपको इसमें से लीडरशिप मिल रही है ना, तो मुझे इसमें से फॉलोअरशिप भी मिल रही है। साथियों को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से लोग अपने आप को जोड़ें और इन सारी चीज़ों पे लेकर चलें, अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। हम में से जिसको भी अल्लाह ने ये सुनवाया, ये अल्लाह की एक रहमत थी। अल्लाह ताला हमसे इस नेमत का हक अदा करवा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।